सदा सर्वदा हृदय में ब्रह्म तत्व विद्या तत्व ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या के ज्ञान से योगी जन मुक्त हो जाते हैं और संसार बाधित नहीं करता है, ऐसे ब्रह्म विद्या को धारण करने वाले और ब्रह्म विद्या प्रिय मारे संत राम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए वर्तमान महाराज श्री के चरणों में वंदना करता हूँ, क्योंकि इनकी जो शास्त्र प्रियता है वह प्रस्फुटित होती है ये संस्कृत वांग्मय के पोषण के द्वारा। यह संस्कृत वांग्मय का पोषण संसार का पोषण है, क्योंकि संस्कृत वांग्मय संपूर्ण संसार को धारण करता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को तपस्या के द्वारा वेदों का ज्ञान होता है, उन्हीं वेदों के अनुसार सभी प्राणियों का नाम और जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं। यदि ज्ञान न हो तो उत्पत्ति नहीं होगी, ज्ञान न हो तो पालन नहीं होगा, इसलिए उत्पत्ति और पालन आदि सभी के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान वेदों के द्वारा पुराणों के द्वारा धर्म शास्त्रों के द्वारा और सत्पुरुषों के चरित्र के द्वारा जाना जाता है। तो सत्पुरुष लोग संस्कृत वांग्मय और वेद वांग्मय की रक्षा के लिए कटिबद्ध होते हैं, ऐसे महाराज श्री के चरणों में अपनी प्रणति को स्वीकार करते हुए प्रणति को समर्पित करते हुए कल हमने श्राद्ध के विषय में कुछ चर्चा किया था, जो कि अवश्य कर्तव्य है, जिसे हम त्याग नहीं सकते हैं। जैसे माता पिता की उपेक्षा नहीं करते हैं, उसी प्रकार से श्राद्ध की उपेक्षा माता पिता की उपेक्षा है, इसलिए माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। घर में रह करके घर की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, जल में रह करके मगर से कैसे बैर रख सकते हैं, वैसे ही माता पिता की उपेक्षा किसी भी पुत्र को नहीं करनी चाहिए। तो जीते जी तो आज्ञा पालन है ही है। इसके बाद जो श्राद्ध के भेद बतलाए हैं, तीन प्रकार के श्राद्ध के भेद बतलाए गए हैं, उसमें नित्य श्राद्ध का विधान है। आप नित्य अन्न को निकाल करके बनने वाले पकने वाले चावल से एक पिंडदान अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं, वो नित्य श्राद्ध है। फिर नैमित्तिक श्राद्ध है, किसी निमित्त को लेकर के आपके यहाँ पुत्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है, तो नाल छेदन के पूर्व में जो अशौच है वह नहीं लगता है, इस निमित्त श्राद्ध करना चाहिए पितरों का। और नैमित्तिक नित्य नैमित्तिक और काम्य, यदि आप बीमार हो उस समय भी श्राद्ध करने का विधान है, उससे पितरों की तुष्टि होती है। गया श्राद्ध इत्यादि करने जाना हो उस समय भी श्राद्ध का विधान है, उस समय घृत श्राद्ध करते हैं, घी के द्वारा श्राद्ध करते हैं, और घी के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं उसके द्वारा एक वर्ष तक पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। पुराने जमाने में जब मतलब कलयुग में तो वर्ज्य है, मांस से भी श्राद्ध होता रहा है, तो उससे पितरों को मात्र 2 महीने से 3 महीने की तृप्ति होती थी, और कलयुग में मांस श्राद्ध वर्जित है, क्योंकि हिंसा होगी, और हिंसा यदि बड़े लोग करेंगे तो उनके देखा देखी छोटे लोग भी हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। का अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वमेध यज्ञ वर्जित है कलयुग में, गवालंबम गोमेध यज्ञ वर्जित है, सन्यास वर्जित है, क्योंकि सन्यास में सभी लोग पार नहीं पाएंगे कलयुग में, वैराग्य कम हो जाएगा लोगों में। फल पैतृकम, और फल कहते हैं मांस, उसके द्वारा पैतृक मतलब पितृ कार्य वर्जित है। देवराज सुतोत्पत्ति, और यदि पति नहीं है तो देवर के साथ रह करके सुत की उत्पत्ति, यह भी कलिकाल में वर्जित बतलाया गया है। तो ये 5 कलिवर्ज्य प्रकरण में आते हैं, कलि में क्या क्या वर्जित है अलग अलग ऋषियों ने निर्धारित कर दिया है, समय के अनुसार आचरण होते हैं। जो समय सतयुग में होता था वह आज कलि में नहीं हो सकता है, क्योंकि कली जो सतयुग में एक युग में लोग प्राप्त करते थे वो कली युग में 24 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कली की जो है धर्म में महिमा भी है। इसलिए कलिकाल में अभिप्राय यह है कि कलिकाल में युगानुरूप धर्म होते हैं। तो उस धर्म में बतलाया कि श्राद्धादि जो करते हैं वह घृत श्राद्ध का विधान है। घी के श्राद्ध से पितरों की तृप्ति होती है। घी क्या है, घी तत्व क्या है, आप समझे। दूध से दही बना और दही से आपने मक्खन बनाया और मक्खन से घी निकला, मतलब दूध का संपूर्ण सार तत्व घी है। दूध बिगड़ जाएगा, मक्खन बिगड़ जाएगा, दही बिगड़ जाएगी, घी नहीं बिगड़ेगा। उसमें भी गाय का घी हो जितना ही पुराना होगा उतना ही औषधि का काम करेगा। तो जो सार तत्व है वह पितरों के लिए हमें देना चाहिए, अभिप्राय है घृत श्राद्ध का। और श्राद्ध की पूर्ति मध से होती है। मध जो भ्रमर ला करके बनाता है उस मध के द्वारा पितरों की तृप्ति होती है। गाय के घी के द्वारा होती है, मधु घी, साथ में कुशा जिसको दर्भ कहते हैं, यहाँ डाभ ब्राह्मण लोग बोलते हैं, यहाँ कुश दर्भ और काली तिल, ये तीन पितरों को प्रिय है। साथ में कुतुपस तिलाह श्राद्धे त्रीणी पवित्राणी दौहित्रम कुतुपस तिलाह। दौहित्र कहते हैं बेटी के बेटे को, दुहितु अपत्यम दौहित्रम। कुतुप मतलब दोपहर का काल, 12 बजे के बाद का काल, 4-5 बजे तक। और काली तिल ये पितरों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से श्वेत से काली तिल पैदा हुई है, इसलिए वह अत्यंत ही प्रिय है। कृष्ण तिल, सफेद तिल श्राद्ध में वर्जित है। तंत्र के प्रक्रिया में श्वेत तिल का विधान है और श्राद्ध में सफेद तिल वर्जित है। काली तिल का प्रयोग करना चाहिए। काली तिल मांगी है इसलिए पंडित लोग सफेद तिल लाके प्रयोग करते हैं, यह जानने लायक बातें हैं। इसलिए काली तिल का श्राद्ध में प्रयोग करना चाहिए। और अमावस्या तिथि पितरों के लिए प्रशस्त बतलाई गई है। फिर अष्टमी को अष्ट का श्राद्ध का विधान बतलाया गया है। इस तरह से साल में पूरे पूरे 96 अवसर हैं जहां श्राद्ध करने से व्यक्ति रोगी नहीं होता है और उसके यहाँ कलह इत्यादि की निवृत्ति हो जाती है। इनमें तीर्थ श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व बतलाया है। पुष्कर आदि में तीर्थ करने से पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है, प्रेतत्व से मुक्ति हो जाते हैं। उसी तरह से गया में जाकर के तीर्थ करने से, काशी में तीर्थ श्राद्ध करने से, हरिद्वार में तीर्थ श्राद्ध करने से, फिर गोदावरी नदी के तट पर जाके तीर्थ श्राद्ध करने से, और ये नर्मदा नदी के पास चाणोद में जाकर के तीर्थ श्राद्ध करने से, इन तीर्थों की महिमा बतलाई है। तीर्थ में जाकर के एक पिंड दान भी कर दिया पितरों के निमित्त, तीर्थ श्राद्ध महज आधे घंटा में हो जाता है। तो वहाँ पितर नित्य बने रहते हैं। इसलिए जो पुष्कर तीर्थ है वहाँ का अत्यंत महिमा वर्णन किया है। फिर हरिद्वार में भी तीर्थ वर्णन किया है कि हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। जो 7 पुरियां हैं वह मोक्षदायिनी है। वह 7 पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या भगवान राम जी जहाँ जन्म लिए, क्या पूछना है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, माया हनत पुरी मतलब हरिद्वार, काशी पुरी भगवान विश्वनाथ की नगरी, कांची पुरी दक्षिण भारत में, अवंतिका पुरी उज्जैन, पुरी जगन्नाथ पुरी, द्वारावती मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जहां अपनी कर्म भूमि बनाया, जिसको जो आपके पास विद्यमान है द्वारिका। ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी है। यहाँ जा करके श्राद्ध दान इत्यादि से इतर अक्षय तृप्त होते हैं। इसके बाद नैमिषारण्य और पुष्करारण्य, पुष्कर तीर्थ को पुष्कर पुष्करारण्य बोलते हैं। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में जहां मंगल हो ऐसा जो व्यक्ति इंद्रजीत होगा, इंद्रिय जीत होगा, उसके लिए जंगल में भी मंगल होंगे। और जिसकी इंद्रियां जीती नहीं गई है, जो इंद्रियों के बस में घूमता है, वह घर में रह करके भी सबसे कलह करते रहेगा। घर में रह करके भी इंद्रियों के विषय भोगों के चक्कर में अपने स्वजनों के साथ विरोध करते रहेगा। इसलिए कहा, बने पिराग प्रभवन्ति रागिणाम गृहे पिपंचेन्द्रिय निग्रहोस्तपः। वन में भी जो है लोगों को राग आ जाते हैं तो मुनि लोग जो है पतित हो जाते हैं। जबकि गृहस्थाश्रम में जो पांच इंद्रियां हैं, रूप रस इत्यादि को ग्रहण करने वाली, उनका यदि आप निग्रह कर लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, तो यह आपकी तपस्या है। इसलिए हमेशा ही सम दम तितिक्षा उपरति ये सब में रहना चाहिए। दमन जो है वह इंद्रियों का दमन है, यह समझ करके कि हमारी ये इंद्रिय विषय भोग में जाएगी तो हमारा स्वजनों के साथ विरोध होगा, क्योंकि भोग ही बाधित करते हैं। आज दम की महिमा बहुत अधिक आई है। आज तो मैंने दम की महिमा से संबंधित कम से कम 10-15 श्लोक हमने लिखा, जैसे लगा कि दम स्तोत्र ही था। वहां 18वें अध्याय में आया है कि दम के विषय में, दमे नहि नम न पुनन्ति वेदा। यदि दम न हो, इंद्रियों को आप दमन न करो, तो आप वेद भी पढ़ोगे तो पवित्र नहीं हो पाओगे, क्योंकि अपवित्र रहोगे हमेशा इंद्रियों के विषय वासना के चलते। यद्यप्यधीता सह षड्भिरंगई, यदि 6 अंग के साथ वेद का अध्ययन भी किया हो और यदि उसमें दम न हो तो बेकार है। सांख्यम च योगश्च कुलं च जन्म, सांख्य भी क्यों न पढ़ लिया है, लेकिन सांख्य पढ़ने का फल यही है कि अपने इंद्रियों को बस में किया जाए। सांख्यम च योगश्च कुलं च जन्म, उत्तम कुल में यदि जन्म हुआ तो भी उत्तम कुल पुलस्त के नाति तारावण घर दिया न बाती। तो उत्तम कुल में पुलस्त ऋषि के कुल में उत्पन्न होने वाला राज, यहाँ ऋषि पुलस्त जो है वो भीष्म को कथा सुना रहे हैं, नैमिषारण्य के विषय में बतला रहे हैं। वहाँ भी जो है इंद्रिय नहीं जीतने वाला रावण, पर स्त्री का हरण करने वाले रावण की दुर्दशा हो रही है। तो कुलंच जन्म तीर्थाभिषेक निरर्थकानी, तो आपके तीर्थ में जाना भी क्या है, निरर्थक ही है। तो दम को इतना महत्वपूर्ण बतलाया। हाँ, यदि दम मतलब ये संयम है, अपने इंद्रियों को संयमित रखना। हमें कितना आहार ग्रहण करना है, अष्टौग्रासा मुनिर् भक्ष्याः, 8 ग्रास जो है मुनियों को ग्रहण करना चाहिए। अमितम ब्रह्मचारियाम, ब्रह्मचारियों के लिए अमित बतलाया है, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग पचा लेते हैं कसरत इत्यादि करके, पद यात्रा करके, देव तीर्थाटन करके, लेकिन मुनि लोग बैठ करके मनन करते हैं, शास्त्रों के अर्थों का चिंतन करते हैं, समाज की बुराइयों को कैसे दूर करें इसके लिए उनको मनन करना होता है। मनन तब होगा जब आहार संयमित होगा। यदि संयमित आहार नहीं है, आहार संयम नहीं है, तो हमारे जो चिंतन की धारा है वह रुक जाएगी, वह पचाने में लग जाएगी और निद्रा आएगी और निद्रा बाधित करेगी। तो आलस्यादन्य दोषाच्च मृत्यु विप्रां जिघांसति, आलस्य और अन्य का दोष, ये दो जो है संतों को, महंतों को, ऋषियों को, सबको बाधित करता है। इसलिए अन्न का विचार बहुत किया गया है, यह भी दम ही है। कहा त्यजतः संचयान सर्वान, सभी प्रकार के यदि आप संचयों का त्याग कर रहे हो, यांतिना समुपद्रवाः, आपके पास जितने उपद्रव हो रहे हैं, आप किसी का धन ग्रहण करके इकट्ठा कर रहे हो, उस पर लोगों की नजर है, इसीलिए लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं। जो आए आप उसका त्याग करते जाओ, लोग आपको देने वाले मिल जाएंगे, अरे ये कुछ नहीं रखता इसको दो, ये तो दूसरे को ही देने वाला है, क्या करेगा। महाराज श्री के पास इतना सब कुछ है, फिर भी महाराज श्री कितना ग्रहण करेंगे, उसमें से 2 रोटी या 4 रोटी सुबह या शाम, बाकी सब तो भक्त का ही है ना, भक्त ही देते हैं और समाज के पास जाता है। सागर जल ग्रहण नहीं करता, नदियां जल पीती नहीं, वृक्ष फल खाता नहीं, तो परोपकाराय सताम विभूतये, वृक्ष बहु नहीं फल भचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। परमार्थ के लिए ही साधु जन जीवित रहते हैं, वह सबको बतलाते हैं यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम करो, हमारी उपस्थिति इसीलिए है, हमारे लिए नहीं है, इसीलिए बतलाया है कि त्यजतः संचयान सर्वान यान्ति नाशम उपद्रवाः, जो उपद्रव है वह शांत हो जाते हैं। जो विषयों का त्याग कर देता है, धन का त्याग करता है, नहीं संचय